एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सिर्फ पन्नों का ढेर नहीं है, ये तो एक पूरी जिंदगी का आईना है, एक आत्मा की कह सकते हैं अनवरत खोज की कहानी।
जी,
ये है मोहनदास करमचंद गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग।
बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ मतलब भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महानायक की कहानी भर नहीं है।
हाँ,
ये इस बात की पड़ताल है कि कैसे एक साधारण सा, हाँ साधारण सा ही दिखने वाला इंसान अपनी अंदरूनी कश्मकश से, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकतों से जूझते हुए अपने ही बनाए सिद्धांतों पर चलकर महात्मा बन गया। उन्होंने खुद इसे सत्य के प्रयोग कहा, सत्य जिसे वो, आप समझिए, ईश्वर से कम नहीं मानते थे।
और शायद यही बात इसे आज भी इतनी इतनी प्रासंगिक बनाती है ना।
बिल्कुल,
ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये तो ये समझने की कोशिश है कि नैतिक ताकत कैसे बनती है, कैसे निजी जीवन का सच आपके सार्वजनिक जीवन पर असर डालता है।
सही बात है।
मतलब हर उस इंसान के लिए एक आईना हो सकती है जो अपनी जिंदगी को ज्यादा सार्थक, ज्यादा उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहता हो।
आपने बिल्कुल सही पकड़ा, गांधी जी इस पूरी किताब में यही तो दिखाते हैं कि भाई बाहर की दुनिया में अगर बदलाव लाना है तो पहले अपने अंदर की दुनिया को साधना होगा, उसे शुद्ध करना होगा।
आत्मानुशासन और आत्मशुद्धि, वो मानते थे कि ये मानवता की सेवा की एकदम बुनियाद है।
तो चलिए इस सफर को और करीब से देखते हैं।
हाँ जरूर, शुरुआत उनके बचपन से करते हैं। पोरबंदर और राजकोट में उनका जन्म हुआ,
जी
शुरुआती साल बीते।
जी
सुना है उनकी माँ पुतलीबाई बहुत धार्मिक थीं, उनके व्रत उपवास और पिता करमचंद की सत्यनिष्ठा का भी जिक्र आता है।
बिल्कुल, और इसका उन पर बहुत गहरा असर पड़ा। माँ की गहरी धर्मनिष्ठा से उन्हें आत्म अनुशासन की एक तरह से पहली सीख मिली।
अच्छा,
पिता की सत्यनिष्ठा ने सच बोलने की अहमियत बताई। फिर घर का माहौल भी ऐसा था, अलग अलग धर्मों के लोग आते थे, जैन मुनि भी आते थे, तो अहिंसा का सिद्धांत उनके मन में कहीं ना कहीं बचपन में ही बैठ गया था।
लेकिन दिलचस्प बात यह, जैसे आपने कहा कि वो सिर्फ अच्छी बातें नहीं लिखते।
हाँ, यही तो खास बात है, वो अपनी कमजोरियों को भी पूरी बेबाकी से सामने रखते हैं।
हाँ, ये पढ़कर मैं भी चौंका था। बचपन में वो छोटी मोटी चोरी करना या दोस्तों के कहने पर छुपकर मांस खा लेना,
जी,
अपनी कामुक भावनाओं से उनका जो संघर्ष था, इन सबको वो बिना किसी झिझक के लिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो शुरू से ही बता रहे हैं कि देखो, सच की राह आसान नहीं है
बिल्कुल,
और अपनी कमियों को मानना ही शायद उस राह पर पहला कदम है।
एकदम सही। यहीं से उनकी पूरी किताब का जो केंद्रीय भाव है ना, सत्य के प्रति पूरी ईमानदारी, चाहे वो कितना भी असहज क्यों ना लगे, वो तय हो जाता है। फिर 13 साल की छोटी सी उम्र में कस्तूरबा से उनकी शादी हुई।
हाँ
का दौर आया कानून की पढ़ाई के लिए।
जी,
वहां भी एक अजीब कश्मकश थी। एक तरफ वो विलायती साहब बनने की कोशिश में है, नाच सीख रहे हैं, भाषण देना सीख रहे हैं,
हाँ,
और दूसरी तरफ माँ को वचन दिया था कि शाकाहारी रहेंगे, उसे निभाने की जद्दोजहद चल रही है। ये विरोधाभास क्या दिखाता है?
ये दिखाता है कि उनकी पहचान बन रही थी, आकार ले रही थी। वो बाहरी दुनिया के तौर तरीके देख सीख रहे थे, लेकिन अपने अंदर के जो मूल्य थे उनसे भी जूझ रहे थे। और असल में लंदन में ही उनकी बौद्धिक और आध्यात्मिक खोज तेज हुई।
अच्छा, कैसे?
उन्होंने अलग अलग धर्मों को पढ़ना शुरू किया, थियोसोफी, हिंदू धर्म, खासकर गीता, ईसाई धर्म, बाइबल, इनका तुलनात्मक अध्ययन किया। और यही उन्हें यह समझ आया कि भाई, सारे धर्मों के मूल में कुछ एक जैसे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत हैं। और वो शाकाहारी सोसाइटी से भी जुड़े थे वहां।
हाँ, वो भी एक अहम अनुभव था, पहली बार उन्हें किसी संगठन के साथ काम करने का, सार्वजनिक तौर पर अपने विचार रखने का मंच मिला, और उन्होंने आहार को सिर्फ सेहत से नहीं, नैतिकता से जोड़कर देखना शुरू किया। तो ये शुरुआती साल जो थे, वो संघर्ष के, प्रयोगों के और अपनी पहचान को गढ़ने के साल थे। गलतियां मानना और अलग अलग विचारों को जानना, यही उनके सत्य की खोज की नींव बना।
इसके बाद कहानी पहुंचती है दक्षिण अफ्रीका, और ये शायद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ।
बिल्कुल, भारत में वकालत कुछ खास चली नहीं, तो 1893 में एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका चले गए।
हाँ,
और वहां जाते ही उन्हें नस्ली भेदभाव की जो कड़वी सच्चाई थी, उसका सामना करना पड़ा। पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन वाली घटना,
वो तो बहुत मशहूर है।
वो तो जैसे एक प्रतीक बन गई। फर्स्ट क्लास का टिकट था उनके पास, फिर भी उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो भारतीय थे।
उस एक रात ने, उस अपमान ने क्या बदला? क्या वो सिर्फ एक व्यक्तिगत मतलब पर्सनल इंसल्ट थी?
नहीं, वो सिर्फ व्यक्तिगत अपमान नहीं रहा। उस रात स्टेशन पर ठंड में ठिठुरते हुए उन्होंने जो महसूस किया, उसने उनके अंदर के उस डरपोक झिझकने वाले वकील को एक दृढ़ निश्चयी कार्यकर्ता में बदल दिया। उन्होंने तय किया कि वो इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, भागेंगे नहीं। ये एक व्यक्ति के अपमान से शुरू हुआ, लेकिन पूरे समुदाय पर जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ लड़ाई का संकल्प बन गया। ये उनके जीवन का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था। दिशा ही बदल गई उनकी।
और फिर उन्होंने वहां भारतीयों को इकट्ठा करना शुरू किया, नेटाल इंडियन कांग्रेस बनाई।
जी,
अपने वकालत के काम में भी उनका नजरिया बदल गया था शायद।
बिल्कुल, वो अब सिर्फ केस जीतने पर ध्यान नहीं देते थे, वो सच सामने लाने और दोनों पार्टियों में सुलह कराने को ज्यादा अहमियत देने लगे।
अच्छा।
निजी जीवन में भी बड़े बदलाव किए, सादगी अपना ली, अपने काम खुद करने लगे, कपड़े धोना, बाल काटना, इस तरह के। और इसी दौर में उन्होंने जॉन रस्किन की वो किताब पढ़ी, अनटू दिस लास्ट।
हाँ, इस किताब का जिक्र बहुत आता है, क्या खास था इसमें, इसका क्या असर हुआ?
गहरा असर हुआ। रस्किन के विचारों ने, खासकर ये वाला विचार कि हर तरह के काम का, हर तरह के श्रम का मूल्य बराबर है और सबका कल्याण होना चाहिए, यानी सर्वोदय, इस विचार ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। ये उनके लिए दूसरा बड़ा वैचारिक टर्निंग पॉइंट था, कह सकते हैं। और इसी प्रेरणा से उन्होंने फौरन फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की।
अच्छा।
हाँ, एक ऐसा समुदाय जहाँ सब मिलकर रहते थे, खेती करते थे, अपना काम खुद करते थे। ये उनके सिद्धांतों को जमीन पर उतारने का एक क्रांतिकारी प्रयोग था। इसने अर्थशास्त्र और समुदाय को लेकर उनका पूरा नजरिया ही बदल दिया।
और यहीं से सत्याग्रह का विचार भी आया।
जी हाँ, जब ट्रांसवाल सरकार ने भारतीयों के लिए वो अपमानजनक रजिस्ट्रेशन कानून बनाया।
हाँ हाँ, वो पहचान पत्र वाला।
बिल्कुल, उसी के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह, यानी सत्य बल या सत्य का आग्रह, ये तरीका विकसित किया।
और ये सिर्फ मतलब चुपचाप बैठ जाना नहीं था, निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं था ये।
इसे थोड़ा और समझाएंगी, ये निष्क्रिय प्रतिरोध से अलग कैसे था?
देखिए, सत्याग्रह में निष्क्रियता नहीं थी, इसमें प्रेम और सत्य की सक्रिय शक्ति थी। इसका आधार था आत्मबल। इसमें दुश्मन को हराना मकसद नहीं था, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करना था।
अच्छा।
और इसके लिए जरूरत पड़ने पर खुद कष्ट सहना पड़ता था। ये अन्याय के सामने सच पर डटे रहने और अहिंसा का पालन करने का एक संगठित एक्टिव तरीका था।
पर इस रास्ते पर मुश्किलें तो बहुत आई होंगी, जेल जाना पड़ा होगा।
बहुत, कई बार गिरफ्तारियां हुई, जेल गए, लेकिन गांधी जी ने जेल के समय को भी बेकार नहीं जाने दिया। उसे उन्होंने एकांत, अध्ययन और आत्ममंथन का अवसर माना।
और इसी दौरान उन्हें महसूस हुआ कि अगर सार्वजनिक जीवन में पूरी तरह से समर्पित होना है तो इंद्रियों पर और ज्यादा नियंत्रण की जरूरत है।
अच्छा।
और तब उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया।
अच्छा।
फिर उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की, जहां शिक्षा, स्वावलंबन, प्राकृतिक चिकित्सा, इन सब पर और प्रयोग हुए।
तो ये जो दक्षिण अफ्रीका का पूरा दौर था, वो असल में उनकी एक प्रयोगशाला जैसा रहा।
बिल्कुल।
व्यक्तिगत अपमान से सामाजिक कार्यवाही तक का सफर, कानूनी समझ और आध्यात्मिक खोज का मिलना, और फिर व्यक्तिगत हिम्मत से सामूहिक प्रतिरोध का विकास, ये सब वही हुआ।
एकदम सही कहा, सत्याग्रह का जो सिद्धांत था, जो तरीका था, वो वहीं परिपक्व हुआ।
फिर 1915 में वो भारत लौटे, लेकिन यहाँ आते ही वो सीधे राजनीति में नहीं कूद पड़े।
नहीं नहीं, उनके जो राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले।
हाँ।
उन्होंने सलाह दी कि पहले एक साल पूरा भारत घूमो, देश की जमीनी हकीकत को समझो, लोगों की समस्याओं को करीब से देखो। ये उनकी गहरी अवलोकन क्षमता दिखाता है और जमीन से जुड़ने की उनकी कोशिश भी।
सही बात है।
इसके बाद अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई और ये आश्रम उनके सभी कामों का केंद्र बन गया, उनके सिद्धांतों की एक जीती जागती प्रयोगशाला।
और भारत में उनके शुरुआती सत्याग्रह, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये सफल रहे?
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण थे। चंपारण 1917 में नील किसानों का शोषण हो रहा था। गांधी जी वहां गए, लेकिन पहले पूरी गहराई से मामले की जांच पड़ताल की, सारे तथ्य इकट्ठे किए।
अच्छा।
फिर सविनय अवज्ञा का रास्ता अपनाया और सफल रहे। ये दिखाता है कि उनका सत्याग्रह सिर्फ भावनाओं पर नहीं, तथ्यों पर आधारित था। खेड़ा 1918 में फसल बर्बाद हो गई थी तो किसानों के लगान माफी के लिए संघर्ष किया। इसमें सामूहिक अहिंसक असहयोग की ताकत देखने को मिली।
और अहमदाबाद मिल हड़ताल।
हाँ, अहमदाबाद 1918 में मिल मजदूरों और मालिकों के बीच विवाद था, उन्होंने मध्यस्थता की और मजदूरों के पक्ष में पहली बार सार्वजनिक उपवास रखा। अंत में समझौता हुआ।
तो इन सफलताओं ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े नेता के रूप में स्थापित कर दिया।
बिल्कुल।
फिर आया असहयोग आंदोलन 1920, जलियांवाला बाग नरसंहार और खिलाफत का मुद्दा।
हाँ, ब्रिटिश हुकूमत के रवैये के खिलाफ ये एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। रणनीति सीधी थी, अंग्रेजी सामान, अदालतें, स्कूल, इन सब का बहिष्कार करो और स्वदेशी अपनाओ।
स्वदेशी।
और चरखा इसका प्रतीक बन गया।
जी,
चरखा सिर्फ कपड़ा बनाने का औजार नहीं था।
नहीं
नहीं, वो आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। अंग्रेजी मिलों पर हमारी निर्भरता कम करने का एक जरिया था। साथ ही वो रोज कताई को अनुशासन, एकाग्रता और शारीरिक श्रम के सम्मान का प्रतीक भी मानते थे।
अच्छा।
ये स्वदेशी और सर्वोदय के विचार से जुड़ता था और कहीं ना कहीं उनके ब्रह्मचर्य यानी आत्मनियंत्रण के अभ्यास से भी।
लेकिन फिर वो चोरी चोरा वाली घटना हुई और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। ये फैसला आज भी कई लोगों को मतलब थोड़ा अजीब लगता है। आंदोलन तो अपने चरम पर था।
हाँ, ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है कई बार।
इसे तीसरा बड़ा टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है?
क्योंकि ये उनके सिद्धांतों के प्रति उनकी जो अटूट निष्ठा थी उसे दिखाता है। चोरी चौरा में जब भीड़ हिंसक हो गई, पुलिस थाने में आग लगा दी,
हाँ,
तो गांधी जी ने फौरन पूरा आंदोलन वापस ले लिया। उनके कई करीबी साथी भी इस फैसले से सहमत नहीं थे।
हाँ।
उन्हें लगा कि भाई, एक अकेली घटना की सजा पूरे आंदोलन को क्यों दी जा रही है।
सही बात है।
लेकिन गांधी जी के लिए साधन यानी अहिंसा, उसकी पवित्रता उतनी ही जरूरी थी जितना कि साध्य यानी स्वराज। उन्होंने साफ कर दिया कि वो हिंसा के रास्ते पर चलकर आजादी नहीं चाहते। इस फैसले ने भले ही उस वक्त राजनीतिक नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन इसने गांधी जी के नैतिक अधिकार को बहुत ज्यादा मजबूत किया। ये दिखाया कि उनके लिए सिद्धांत पहले हैं, राजनीतिक नफा नुकसान बाद में।
पर पहुंचने की कहानी नहीं है, ये रास्ते की कहानी है, उन प्रयोगों की कहानी है। उनकी विरासत सिर्फ भारत की आजादी नहीं है,
सही,
बल्कि सत्य और अहिंसा के साथ जीने का एक तरीका है। व्यक्तिगत शुद्धि से सामाजिक बदलाव लाने का एक दर्शन है और सेवा को एक आध्यात्मिक साधना बनाने की प्रेरणा है।
चलिए, इन मूल सिद्धांतों को थोड़ा और समझते हैं। सत्य और अहिंसा, ये दो शब्द तो जैसे उनके साथ जुड़ी गए हैं।
बिल्कुल। सत्य उनके लिए परम लक्ष्य था, ईश्वर का ही दूसरा नाम कह लीजिए। लेकिन ये कोई बनी बनाई चीज नहीं थी जिसे पा लिया जाए, ये एक निरंतर चलने वाली खोज थी। इसीलिए तो उन्होंने अपनी कहानी को सत्य के प्रयोग कहा, और अहिंसा इस सत्य तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था। ये कायरता या निष्क्रियता बिल्कुल नहीं थी।
हाँ, ये समझना जरूरी है।
ये तो प्रेम और साहस की सक्रिय शक्ति थी। इसे मन, वचन और कर्म तीनों में अपनाना था। उनका पक्का विश्वास था कि पवित्र साधन से ही पवित्र साध्य मिल सकता है।
और ब्रह्मचर्य, इसे लोग अक्सर सिर्फ शारीरिक संयम समझ लेते हैं।
हाँ, पर गांधी जी के लिए इसका मतलब कहीं ज्यादा बड़ा था। ये सिर्फ अविवाहित रहना या शारीरिक संबंध न बनाना नहीं था, बल्कि अपनी सभी इंद्रियों, देखने, सुनने, बोलने, यहाँ तक कि सोचने पर नियंत्रण रखना था।
अच्छा।
उनका मानना था कि इससे जो ऊर्जा बचती है उसे रचनात्मक कामों में, सेवा में लगाया जा सकता है। ये आत्मशुद्धि का एक अनिवार्य हिस्सा था। उनके आहार के प्रयोग, उपवास, मौन, व्रत, ये सब भी इसी से जुड़े थे।
और सत्याग्रह को हम अन्याय के खिलाफ एक हथियार की तरह देखते हैं।
ये हथियार था, पर एक आध्यात्मिक हथियार। ये सत्य और अहिंसा का व्यवहारिक रूप था, अन्याय के सामने डटे रहने का। इसकी ताकत बाहरी नहीं, अंदरूनी थी। इसमें दुश्मन को सजा देना नहीं, बल्कि आत्म पीड़ा सहकर उसका हृदय परिवर्तन करना लक्ष्य था।
सर्वोदय और स्वदेशी, ये कैसे जुड़े हैं आपस में?
सर्वोदय का मतलब है सबका उदय या सबका कल्याण, खासकर समाज के सबसे कमजोर तबके का। ये विचार उन्हें रस्किन से मिला था और गांधी जी इसे अपना नैतिक कर्तव्य मानते थे।
जी।
स्वदेशी इसी का एक व्यवहारिक रूप था, अपने देश में बनी चीजों का इस्तेमाल करना ताकि स्थानीय लोगों को काम मिले, देश आत्मनिर्भर बने, शोषण कम हो। ये सिर्फ आर्थिक बात नहीं थी।
हाँ।
ये राजनीतिक और आध्यात्मिक स्वावलंबन का भी प्रतीक था। ये आत्मसम्मान लौटाता था।
आपने आत्मशुद्धि और सेवा पर भी जोर दिया था।
हाँ, क्योंकि गांधी जी मानते थे कि बाहर बदलाव लाने से पहले अंदर बदलाव लाना जरूरी है।
हाँ।
अगर आप व्यक्तिगत रूप से ईमानदार नहीं हैं, अनुशासित नहीं हैं, तो सार्वजनिक जीवन में प्रभावी कैसे हो सकते हैं?
सही बात।
अहंकार को कम करके ही निस्वार्थ सेवा हो सकती है, और सेवा उनके लिए कोई एहसान नहीं थी बल्कि खुद एक आध्यात्मिक साधना थी। दूसरों की सेवा करना मतलब ईश्वर की सेवा करना।
और उनके विचारों में धार्मिक सहिष्णुता और सादगी का भी बड़ा महत्व था।
बिल्कुल, वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते थे। मानते थे कि रास्ते भले ही अलग हों, पर मंजिल यानी सत्य या ईश्वर एक ही है। हिंदू मुस्लिम एकता उनके लिए बहुत बहुत अहम थी। और सादा जीवन उनके लिए सिर्फ एक विचार नहीं था, वो जीते ही ऐसे थे। उनका मानना था कि अगर हम अपनी भौतिक इच्छाओं को कम करें तो सेवा और आध्यात्मिक विकास के लिए ज्यादा ऊर्जा और समय निकाल सकते हैं।
अगर हम गांधी जी के जीवन से कुछ मानवीय सबक निकालें जो आज भी हमारे काम आ सकें, तो वो क्या होंगे? कोई एक दो बातें।
पहली बात तो यही कि सिद्धांतों में, अपने उसूलों में बड़ी ताकत होती है।
हाँ।
सत्य और अहिंसा जैसे मूल मूल्यों पर अगर आप टिके रहें, तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आपको रास्ता और हिम्मत मिलती है। ये बात आज के दौर की जो नैतिक दुविधाएं हैं, उनमें भी उतनी ही सच है।
बिल्कुल। और दूसरा?
दूसरा, अपनी गलतियों से सीखना। गांधी जी ने अपनी हिमालय जैसी भूलों को मानने में कभी कोई संकोच नहीं किया।
हाँ, ये बात बहुत प्रभावित करती है।
ये दिखाता है कि असफलताएं अंत नहीं है, वो सीखने और खुद को सुधारने का मौका होती हैं।
तीसरा, शायद वो अंदरूनी संघर्ष को स्वीकारना।
हाँ बिल्कुल, गांधी जी भी गुस्सा, मोह, अहंकार जैसी भावनाओं से जूझते थे। हम सब जूझते हैं। उनका जीवन बताता है कि आत्म सुधार एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। खुद पर काम करना कभी बंद नहीं होता।
और ये कि हमारा निजी और सार्वजनिक जीवन वो अलग अलग डब्बे नहीं हैं।
एकदम सही। हम अकेले में कैसे हैं, हमारी सोच और हमारे काम में कितनी सच्चाई है, इसी से तय होता है कि हम दुनिया में कितना सकारात्मक असर डाल पाएंगे। प्रामाणिकता मतलब ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है।
अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस भी एक बड़ा सबक है। वो कैसे एक झिझकने वाले, डरने वाले इंसान से एक निडर आवाज बने।
हाँ, और ये कि शुरुआत छोटी हो सकती है। जरूरी नहीं कि आप एकदम से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दें, पर अपनी आवाज उठाना जरूरी है। और आखिर में, सेवा में जीवन का अर्थ खोजना, दूसरों के काम आने में भले ही वो छोटे तरीकों से ही क्यों ना हो, एक गहरा संतोष और उद्देश्य मिलता है जो शायद सिर्फ अपने लिए जीने में कभी नहीं मिल सकता।
तो इस पूरी चर्चा के अंत में अगर तीन सबसे महत्वपूर्ण बातें निकालनी हो, एक भावनात्मक, एक बौद्धिक और एक सार्वभौमिक, तो वो क्या होंगी?
भावनात्मक सबक शायद ये है कि असली ताकत शारीरिक बल या सत्ता में नहीं है।
हाँ।
वो नैतिक साहस में है, सच के लिए खड़े होने की हिम्मत और दूसरों की भलाई के लिए जरूरत पड़ने पर खुद कष्ट उठाने की क्षमता में।
और बौद्धिक स्तर पर कोई इंटेलेक्चुअल इंसाइट?
बौद्धिक रूप से सबसे अहम बात ये लगती है कि साधन और साध्य मतलब मीन्स एंड एंड्स, वो जुड़े हुए हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। हम जिस रास्ते से मंजिल तक पहुंचते हैं, वो रास्ता ही तय करता है कि हमारी मंजिल असल में कैसी होगी। और टिकाऊ बदलाव के लिए अंदरूनी शुद्धि और बाहरी कर्म, ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए।
और एक सार्वभौमिक सबक जो हम सबके लिए हो, यूनिवर्सल लेसन।
मुश्किल और जिंदगी भर चलने वाले काम से होती है।
वाह।
हर इंसान का जीवन सत्य के साथ प्रयोग करने की एक प्रयोगशाला बन सकता है, और साधारण लोग भी असाधारण नतीजे हासिल कर सकते हैं अगर वो अपनी अंदरूनी आस्था और अपने बाहरी कर्मों को एक सीध में ले आए।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।